ਕੀਰਤਨ 5 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 9 ਵਜੇ ਉਪਰੰਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। 12 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਟਾਲ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-995-55 ਜਾਂ 647-200-4006। ਧੰਨਵਾਦ।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਸਿਮ ਅਲੀ। ਅਬ ਆਪ ਆਰਜੇ ਬੋਲੇ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ, ਯਾ ਹੋਸਟ ਬੋਲੇ, ਯਾ ਗੋਸਟ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਹਮ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਵੀਕਐਂਡ ਵਿਦ ਆਸਿਮ ਅਲੀ, ਸਪੋਂਸਰਡ ਬਾਏ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਂਟੇਜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅਬ ਆਪ ਸੋਚੇਂਗੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਜੋ ਸਬਸੇ ਬੈਸਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਉਨਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਤੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਬੈਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਹ ਵੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਹਾਸਪਿਟਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਯਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਸਬਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਸਕੀ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਤੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੋ ਅਬ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋ ਇਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਆਪਕੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 99 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 110% ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਜੀਏ। ਨੰਬਰ ਇਨਕਾ 647-987-0002, 647-987-0002। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਂ ਸਬਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੇ ਬਜਟ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੋਏ ਆਪਕੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਜੋਬ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੇ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਕੋ ਦਿਲਵਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਕੋ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਵਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਅਭੀ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋ 647-967-0002, ਔਰ www.irfi.ca ਪੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਡੇਟ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਯਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮਾ ਡਾਲੀਏ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਲੈਣੇ। ਤੋ ਇਸ ਸੇ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਔਰ ਕਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਵਰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਉਸਮੇ। ਤੋ ਬਹਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੀ, ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਮਾਰੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਯੂਜੁਅਲ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੇ ਹੈ। ਆਜ ਵੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਕਾ ਰਿਵਿਊ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਮੇਂ ਹੁਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, 416-620-1778। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨੰਬਰ, ਅਗਰ ਆਪ ਹਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਆਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ 416-620-1778 ਪੇ। ਔਰ ਆਜ ਕੇ ਕੁਛ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਮੇਂ ਹੁਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਵੀਕ ਮੇਂ ਇਹ ਹੁਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਡੀ ਚੌਕ ਪੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਨਾ ਥਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਥੀ ਉਨਕੀ ਜੋ ਮਨਵਾਨੀ ਥੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਹਮ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਧਰਨਾ ਜੋ ਦੇਂਗੇ ਉਧਰ ਸੇ ਉਠੇਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਆ ਕੁਛ ਯੂੰ ਕਿ ਜਬ ਵੋ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਆਸੂ ਗੈਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲ ਛੋੜੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਇਨਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ G9 ਜਾਂ G11 ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਸੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੀਛੇ ਹਟ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਰਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪ ਡੀ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਡੀ ਚੌਕ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ ਵੀ, ਦਰਖਤੋਂ ਕੋ ਆਗ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਾ, और वहाँ प्रॉब्लम हुई, फिर आर्मी को बुलाना पड़ा, आर्मी डिप्लॉयड हो गई एमएम पोजीशंस पे, डी चौक पे, और जितनी हमारी हसास रेड जोन था वहाँ पे आर्मी आ गई। और फिर इमरान खान साहब वहीं पे उन्होंने एक तकरीर की और उसके बाद वो वापस चले गए। तो ये तो थी रुदात उनकी, जिस पे बहुत ज़्यादा हैरत भी सबको हुई और बहुत ज़्यादा डिस्कशन में भी दो दिन से ये चीज़ें चलीं। एक इस पे हम बात करेंगे कि क्यों वापस गए थे और लोगों की आरा क्या है कि क्यों वापस गए, ये हम आपको बताएंगे। और जो तजिया निगारे वो कह रहे हैं कि क्यों वापस गए, डील हुई है या फिर जैसे कि इमरान खान साहब ने फिर बोल दिया डील तो नहीं हुई, या फिर उन्हें गुस्सा था जो उन्होंने बोला भी कि लोग नहीं निकले जो चाह रहे थे, जितने लोग होने चाहिए थे, फिर उन्होंने ये कहा कि हम शायद तैयारी से नहीं थे। ये इमरान खान साहब ने टीवी पर बैठ के कहा, इसलिए मैं वो बातें कोट कर रहा हूं। तो अब वो फिर छह दिन के बाद आने की बात कर रहे हैं, तो अब छह दिन बाद क्या होगा? अगर इमरान खान साहब छह दिन बाद आते हैं, मान लेते हैं इलेक्शन हो जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, तो क्या जो अभी प्रॉब्लम है इस करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की, जिस पे दूसरी मुल्कों में और दूसरे मीडिया जो के लोग हैं वो शादियाने बजा रहे हैं कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान को कोलैप्स हो रहा है, बहुत अच्छा है, वो भी श्रीलंका की तरह होता जा रहा है, तो क्या वो अगर आ भी जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब जब पहले आए थे, जब मुल्क के हालात पहले बेहतर थे, इससे बेहतर थे जो अब हैं, तो अब अगर आएंगे तो क्या वो इस मुल्क को संभाल लेंगे या नहीं, क्या इस मुल्क को वापस निकाल सकते हैं इस दलदल से, या फिर अभी जिस तरह का जो सिचुएशन चल रही है उसको ही कंटिन्यू करने देंगे ताकि पहले हम क्राइसिस से निकलें फिर बाद में फाइट कर लें। तो एक तो इस मौजू पर हम बात करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने 30 रुपए का पेट्रोल बम गिरा दिया वहां पे। अब बात फिर वही आती है, यहां पे मुल्क भाड़ में चला गया, ब्लेम गेम चलना शुरू हो गई है, जो कि पहले से होती चली आ रही है और अभी भी हो रही है कि अब आप देखें कि 30 रुपए एक गरीब आदमी पे, जो पहले ही पिछले कई सालों से एक गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, जिसके लिए इतनी महंगाई हो गई है कि उसका खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, अब वो शख्स जो है 30 रुपए पेट्रोल पे ज्यादा देगा। 30 रुपए पेट्रोल का मतलब है हर चीज का महंगा हो जाना। अब जब इनसे बोले तो कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने किया हुआ था, ठीक है ना, हमने तो उसको ओबे करना पड़ा क्योंकि बेल आउट पैकेज नहीं मिलता हमें। अब ये बात को अगर देखा जाए तो इस हद तक कि जो आईएमएफ का अपना बयान है वो बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब ने फरवरी में ये सब करना था जो कि नहीं किया, तो उसकी वजह से हम बेल आउट पैकेज नहीं दे रहे। अब ये मैं बात वो कर रहा हूं जो कि ऑथेंटिक है, जो कि उनके बयान आते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अब मैं ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने करना ही था 30 रुपए तो फिर आप पहले कर लेते ना, मतलब इतना टाइम जो गुजार दिया महीना, तो हम और कर्जे में चले गए। अब इतना कर्जा हो गया कि अगर इमरान खान साहब की या किसी की गवर्नमेंट भी आएगी तो वो नहीं संभाल सकेगी इस मुल्क को। अभी बड़ी मुश्किलें हैं इस मुल्क को संभालने के लिए, हालात बहुत गंभीर और खतरनाक हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक जब वो तकरीर कर रहे थे इमरान खान साहब, तो वहां पे वो उनके जो साथी हैं जो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं कासिम सूरी साहब, तो उन्होंने फिर इत्तेफाक की बातें, देखें सब चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत वाज़े तौर पे आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कि खान साहब थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दें। हम शो बिजनेस में हैं तो हम जब किसी से एक्टिंग करवाते हैं तो हम बोलते हैं यार इमोशनल टच नहीं आ रहा। हमारा कहने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इमोशन को बढ़ाओ अपने, मजा नहीं आ रहा तुम्हें देख के, लग नहीं रहा कि तुम्हें देख के हम रोएंगे। तो ये टच जो हम कहते थे अपने फील्ड के अंदर, वो इसलिए कहा करते थे कि थोड़ा सा एक्शन टच होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन टच होना चाहिए, थोड़ा सा यू नो एंटरटेनमेंट टच होना चाहिए। तो अब इस्लामिक टच जो उन्होंने कहा, और फिर फर्दर इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं जो है आशिकाने रसूल हूं और मैं उनको बड़ा मानता हूं, तो बस ये कहना है कि खुदा के लिए हाथ जोड़ के, चाहे वो पीटीआई हो या चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, कोई भी, खुदा के लिए इस्लाम को अपने सियासत में मत लेकर आइए। इस्लाम को सियासत में लाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं होगा लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर अल्लाह के नाम को बेचा गया अपने मफाद के लिए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के अपने सारी आवाम से, सब लोगों से बोलूँगा, ये फाइट को बंद कीजिए, और ये जो इस्लामिक तरीके से या किसी भी तरह से इमोशनल कर देना है करना, प्लीज़ इसको साइड में कर दें, आप अपनी सियासत करें। नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, आसिफ जरदारी चोर, जो भी आप बोल रहे सही है, लेकिन इस्लामिक टच लाने से लोगों के इमोशंस हाई होंगे, एक दूसरे से नफरतें ज्यादा पैदा होंगी, फिर वो दिन ना आ जाए जब लोग एक दूसरे को کہنا شروع کر دیں کہ تم اسلام سے خارج ہو اور ہم اسلام ہیں، یا اس طرح کی کوئی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، نعوذ باللہ، مطلب بڑے مشکل ہو جائے گا اس ملک کے لیے جو کہ اب وہاں آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات ہے جو مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہی چیز کسی نے بہت عرصے پہلے ایک مفکر نے کہی تھی کہ اگر توڑنا ہو کسی کو، کسی بھی قوم کو اگر توڑنا ہو تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر ون یہ ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، پہلی چیز. اور دوسری چیز، آپ ان کے ریلیجن میں لبادہ اڑ کے یا ان جیسے بن کے ان کے ریلیجن کے حساب سے بات کرو اور پھر جا کے ان میں تفرقے پیدا کر دو تو بہت جلدی وہ قوم ٹوٹ جاتی ہے. تو آج مجھے نظر بالکل اسی طرح آ رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہماری قوم بھی بکھر جائے، ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. تو کوشش یہی ہے کہ ہم ایک قوم اور ایک جو کنٹری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، پاکستان جو جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کو محفوظ رکھے. اور کوشش یہی ہے کہ جو ہو سکتا ہے اس کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ برا. حالات بہت گمبھیر ہیں، یہ بات میں پہلے بھی بول چکا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں. اور سوچنا چاہیے اب 6 دن بعد کیا ہوگا، یہ اس کی بات دیکھا جائے گا. تو آپ اگر ہمیں کال کر سکتے ہیں، جب تک ہم اپنے اسپانسرز کی کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں، آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں 416-620-1778 پر. 786 پیزا 786 جو ہے وہ مارکھم ہے، بہت ہی اچھا بہترین پیزا ہے، بہترین ٹاپنگ ہے، حلال پیزا ہے. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ ایک نہیں دو پیزا کھا لیں گے. ان کا نیا فلیور جو میں آپ کو ہر ہفتے بتاتا ہوں کہ بٹر چکن پیزا، ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی زبردست بٹر چکن پیزا ہے. ان کے پاس ویسے تو برگرز بھی ہیں، اور برگرز کے علاوہ ان کے پاس شاورما بھی ہے، ونگز بھی ہیں. دیکھیں میں بولتا ہوں تو میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو آپ اگر مارکھم میں رہتے ہیں تو پیزا 786 پہ جائیے. پیزا کے ساتھ ساتھ آپ ان کے برگر بھی ٹرائی کیجیے اور بٹر چکن پیزا بھی ٹرائی کیجیے. اور کال کر سکتے ہیں آپ ان کو 905-554-7886. دوسرا جو ہے وہ ہے اجوا پیزا تھون کلف میں. تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اجمل خلیلی صاحب، جن کی یہ پیزا پارلر ہیں. تو اجمل خلیلی صاحب نے تھون کلف والوں کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ مزیدار پیزا ہے، ایک بار کھائیں گے بار بار آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ بہترین حلال ٹاپنگ اور بہترین حلال پیزا آپ کو اجوا پیزا تھون کلف میں ملے گا. تو اگر آپ نے اجوا پیزا کھانا ہے تو کال کیجیے 416-423-2792 پر. وینٹیج ویڈیو پروٹیکشن کارپوریشن، شادی ہو، برتھ ڈے ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، وینٹیج آپ کی سنہری یادوں کو محفوظ کرتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو بنوانی ہے، ویڈیو فوٹوگرافی کروانی ہے، تو آپ بالکل اب پریشان نہ ہو، آپ کو بہترین سروسز دیں گے آپ کے اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے. تو آپ کال کر سکتے ہیں 647-745-4104. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں 647-745-4104. اگر آپ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں، پورٹ فولیو بنانا چاہتے ہیں، ایکٹر بننا چاہتے ہیں، تو بھی آپ وینٹیج کو کال کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ٹی وی کمرشل کرنا ہو تو بھی کال کر سکتے ہیں. چرچ، مندر یا مسجد کی فنڈ ریزنگ کمپین کرنی ہو تو بھی آپ ان کو کال کر سکتے ہیں 607-745-4104. اس کے علاوہ مسجد ابراہیم کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بولیں گے، ہر پروگرام میں ہم بولتے ہیں. مسجد ابراہیم جو ہے کینیڈا کی سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں جتنا فنڈ کر سکتے ہیں کیجیے. آپ کا دیا ہوا $1 بھی یقین کریں آخرت میں آپ کے کام آئے گا. www.masjidibrahim.ca پہ جائیے، ڈونیٹ کا بٹن دبائیے، 1, 5, 10, 15, 20, 50 جتنے ڈالر ڈونیٹ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا. اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو تنویر بھائی کو کال کیجیے 416-566-3830 پہ، تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے کہ جہاں ہم فنڈ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں، وہاں صحیح لوگ بیٹھے ہیں یا نہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جہاں فنڈ کر رہے ہیں. unifyimmigration.ca ہے. کسی بھی قسم کی امیگریشن سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو، آپ ابھی فون اٹھائیے، کال کیجیے، اپنے سوالات کے جواب لیجیے، اور وہ بھی بغیر فی دیے. ورنہ ہوتا ہے نا کہ فی ہوتی ہے کسی نہ کسی لوائر کی یا کنسلٹنٹ کی. تو آپ ابھی کال کر سکتے ہیں اسما صابر کو 647-217-5492 پر، 647-217-5492 پر. اور آپ ہمیں بھی کال اگر کرنا چاہتے ہیں ہمارے شو میں شامل ہونے کے لیے تو کال کیجیے 416-620-1778 416-620-1778. اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور ہم جو اب پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پورے ہفتے کیا ہوا، کیسے اور کیوں ہوا، وہ ہم آپ کو بتا دیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسرائیلی صدر نے بھی یہ کہا ہے کہ دو پاکستانی جو ہیں وہ اسرائیل میں اسرائیلی صدر سے بھی مل چکے ہیں، پاکستانی وفد سے ملاقات خوش آئند رہی، یہ اسرائیلی صدر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل سے راستے بھی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں پاکستان کے رابطے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک نئی پیش رفت ہے جو آج کی ہے۔ تو ایسا بھی ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کیجیے 416-620-1778 پر، اور ہمیں بتائیے کہ اگر جو ابھی کرنٹ سچویشن پاکستان کی ہے اس میں عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا دلی لگاؤ ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ اپنے لیڈر کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف باتیں نہیں سننا چاہتے، بالکل صحیح ہے۔ میں ہر پارٹی کے ہر ورکر کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ کو عقل شعور اور ایک طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو جب عقل و شعور دیا ہے تو آپ ضرور یہ دیکھیے کہ آپ کے لیڈر اگر جہاں غلطی کر رہے ہیں تو ان کو ان کی غلطیوں پہ سپورٹ مت کیجیے، بلکہ بولیے کہ انہوں نے غلط کیا تاکہ وہ اچھا کرنا شروع کریں۔ ہوتا کیا ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ پیار کرنے کے چکر میں اس کی بہت ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی غلطیوں کو غلطیاں نہیں کہتے، کہتے بچہ ہے ابھی، یا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، ہم راستے نکال رہے ہوتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اپنے بچے کو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ پھر اس کو شے مل جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ماں باپ تو ہمیں بچاتے رہیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، ہم سپورٹ پہ سپورٹ کرتے جاتے ہیں، ہم بیک اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے اس بچے کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں وہ اپنی عادت سے پھرے گا نہیں، اور ہم اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو سارا بلیم ہمارے سر پر آئے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، آپ کا بڑا ہو، آپ کا لیڈر ہو، ایون میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کسی کی اولاد ہیں اور آپ کے ماں باپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا بہت ان کو بتائیں ضرور، غلط کو غلط کہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ اس لیے ان پہ سب جائز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہوتا صرف یہی ہے کہ جب آپ کی شے ملتی ہے، جب آپ کی چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایشو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں پھر آپ سے ایک دفعہ دوبارہ نمبر ریپیٹ کروں گا، 416-620-1778 پہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجئے اور ہم سے باتیں کیجئے، کیونکہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات اور جو ماحول چل رہا ہے اس میں ہمیں اور ہماری قوم کو اور ہمارے لیڈران کو کس چیز پہ دیکھنا اور فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارے خیال سے ابھی تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونے کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ جب لوگ کول ڈاؤن ہوں گے اور اچھے سے سوچیں گے تو شاید ملک آگے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، تو ہم نے ہائی لائٹ دکھائی تھی، ہم نے اپنے کمرشل بھی بول دیے، پہلے آپ کو سناتے ہیں گانا اور گانے کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں اور اب ہم اس کی تھوڑی سی جانچ پڑتال کرتے ہیں، جو کہ پورے ہفتے ریویو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کیوں چلے گئے تھے، کیا ڈیل ہوئی تھی، اور اگر نہیں تو کیا آرمی نے انشورنس دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، کیا گورنمنٹ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، یہ سب آپ کو اس گانے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ کال کرنا چاہیں تو کال کیجیے 416-620-1778 پہ اور سنتے ہیں گانا۔
سازش ہے عشق کی نے میری فرصت کی، کیوں دل میں اتنی حرکت کی، عشق میں اتنی برکت کی، یہ تو نے کیا کیا، پھروں اب مارا مارا میں، چاند سے بچھڑا تارا میں، دل سے اتنا کیوں ہارا میں، یہ تو نے کیا کیا، ساری دنیا سے جیت کے میں آیا ہوں ادھر، تیرے آگے ہی میں ہارا کیا، تو نے کیا اثر، میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب جب سانسیں لیتا ہوں تیرا ہی نام لیتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا، میری باہوں
सांसों की जो आदतें लगी हैं ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो पड़े पर छाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और।
जी तो हमारे पास कॉल आ गई है। हम जब कॉल क्या कहते हैं, जब कॉल नहीं आती, जब हम गाना सुनाते हैं तो कॉल आ जाती है। खैर एनीवे, कॉलर हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें गाना कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप हमें कॉल करना चाहते हैं कॉल कीजिए 4166201778 पर, तो हम आपसे फिर बात करते हैं। जब तक गाना सुनिए।
कहता हूँ ये जब जब सांसे लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। है तेरी बातें सुनूं, सौदे मैं अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा। क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा। तेरी राहों से जो
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर
जी, मैं जिशान बात कर रहा हूँ।
जी जिशान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी जी मैं ठीक ठाक हूँ। कैसा हूँ, बस आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे बस कहना ये था कि आपने पाकिस्तान के बारे में सवाल किया और पाकिस्तान के बारे में आप बता रहे थे। असल में बात ये है कि जब तक आप चेंज नहीं करेंगे ना, तो आपके मुल्क में कैसे बेहतरी आएगी।
जी जी।
अब आज मैं देख रहा था जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हम जो है वो रोड बना देंगे जो हमें यूरोप तक लेके चली जाएगी। तो यार इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं। उनके अपने कराची की रोडें तो बना दे, छट्टा की तो बना दे।
बिल्कुल सही,
आप यकीन करें, आई एम सॉरी टू से,
बिल्कुल सही बोला आपने।
और जो साफी उसके सामने बैठे हुए हैं, मुझे शर्म आ रही थी यार कि ये साफी भी
कोई सवाल नहीं पूछ रहा,
लेकिन यार कोई ये सवाल उससे नहीं बोल रहा
सर। कराची की रोडें बनाए,
आप ये बात बोल रहे हैं कि हम यहाँ से है, जो है वो यूरोप तक की रोड बना देंगे, यार उसको शर्म नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था लोग भी कहते हैं कि वो बैठे हुए ताली बजा रहे हैं और उसके साथ जो पीछे साफी बैठे वो कह रहे हैं जी जरदारी साहब जी जरदारी साहब। शर्म नहीं आ रही कि यार तुम जिस नवाबशाह में और जहाँ आप जो है वो क्या कहते हैं लाकान और कहीं भी चले हैं, वहाँ लोगों को पानी नहीं है। ये आप
जी जी
जो यूरोप की रोटे बना रहे, तो बात ये है कि आप अगर जब तक आप देखें चेंज नहीं लाते ना, आप किसी भी चीज में, आप लाइफ में किसी भी चीज में आपने आपको देखना, आप जब तक चेंज नहीं लाएंगे आपको सक्सेस नहीं होगी।
जी जी
अब
जी
आप किसी लोगों को दोबारा ले आएंगे और इनसे कहेंगे कि यार ये अच्छे काम करेंगे, ये देखे ना कोई एक बंदा भी तो आप मुझे बता दें सही हो, सब करप्ट है यार, सब करप्ट है। अब एक बंदा उठा इमरान खान, मैंने आज तक इमरान खान को वोट नहीं दिया ना, मैं इमरान खान की पार्टी का हूँ, लेकिन यार मैं कह रहा हूँ वो बंदा
अच्छा। मैं पास एक और कॉल है भाई, आपकी कॉल को मैं ड्रॉप कर दूं या अगर आप चाहें तो सुनते रहे, मैं एक और कॉल ले रहा हूँ। ठीक है
जी जी जी,
थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम।
हेलो
जी। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाम बताएंगे?
अबरार मेरा नाम है।
जी अबरार भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र।
जी अबरार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ बस वही गुजारिश करनी थी, आपने कहा कि वो वापस क्यों चले गए और एक आपने बात कही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया
जी,
और हुकूमत ने ऑर्डर मनवान मान लिया, जो कि जिसमें हकीकत नहीं है।
अच्छा, अच्छा। नहीं मैं मीडिया रिपोर्ट्स बता रहा था कि जब हुकूमत ने कहा तो उन्होंने फिर आने दिया इनको, और हुकूमत ने G9 का कहा था तो ये फिर डी चौक की तरफ मूव हो गए थे। जो जो ARY की न्यूज थी वो मैंने कोट किया सर।
हाँ नहीं उसमें बस
हो सकता है मुबालगा आई हो, मैंने वो न्यूज आपको कोट की। जी जी सर।
हाँ नहीं वो तो वैसे भी क्योंकि ये शेलिंग और ये जी सब जी कुछ होता रहा है और जो लोग उन्होंने गिरफ्तार किए थे वो होते हैं, और इससे पहले भी 3-4 लॉन्ग मार्च हुए थे इमरान हुकूमत में हुए थे, तो इनको पता नहीं किस चीज का डर था जो इन्होंने,
इनको डर था ना बहुत सारे लोग आ जाएंगे शायद, इसलिए उन्होंने कहा जलाओ घेराव कर दो ताकि लोग ही ना आए, क्योंकि सबको जान तो प्यारी है सर, सब डरते तो हैं।
नहीं नहीं बिल्कुल डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही सारी चीजें।
जी जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहते हैं? एक कॉलर हमारे साथ है।
नहीं बस शुक्रिया.
थैंक यू सर, थैंक यू. हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर.
जी वालेकुम अस्सलाम.
सर मुझे आपके बारे में कुछ कहना है.
जी सर जरूर कहिएगा. नाम बताएंगे अपना?
कभी कभी देखा नहीं आपको, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा कमेंट कहना है कि पाकिस्तानी कौम को ना, जितने भी लोग हम इधर रह रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन सबको मैं समझता हूँ कि हम लोग ऐसे हैं कि जैसे समझ लें कि गुलाब के फूल नहीं होते, ऐसे हैं.
थैंक यू सर.
ठीक है. अच्छा, उन फूलों में ना जो बहुत नायाब फूल होता है ना, वो होता है काला गुलाब होता है, जो बहुत रेयर नजर आते हैं ना.
जी सर.
तो मैं आपको काला गुलाब ही समझता हूँ सर. इतनी सेंसेबल और रीजनेबल बात कर रहे हैं इसमें रह के. बहुत ही अच्छा लगा आपकी बात, आपकी कमेंट सुन के. तो भाई इधर तो भीड़ों का छत्ता है, आप इसको हाथ लगाएंगे, आपको बड़ा काम देंगे, लेकिन इज इट गुड वर्क.
सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ एक बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख है और दर्द है. मैंने जो नाम कमाया, मैं शो बिजनेस से हूं सर, लोग मुझे बहुत कम जानते हैं अक्सर, और बेशतर मुझे कहा जाता है कि अपने बारे में बताओ, तो मैं नहीं बताता. मैंने सर 21 साल शो बिजनेस को दिए पाकिस्तान के, जितने आप ड्रामे और फिल्में और जो मैंने वहां शॉर्ट फिल्में की हैं, अभी भी मैं हम टीवी, एआरवाई, जियो, इनके साथ काम कर रहा हूं. तो मैंने 21 साल पाकिस्तान, मुझे जितनी शोहरत, जितनी चीजें अल्लाह ताला ने दी हैं, वो सब मेरे मुल्क से दी हैं. मेरा दिल भी इसी तरह दुखता है जैसे मेरे फादर का दुखता था, वो फिर इस दुनिया से चले गए. ये कहते कहते कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर, वो आज तक नाजुक दौर में ही है. तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि कब सही होंगे. लड़ाई झगड़े सगे बहन भाई में होते हैं, लेकिन जब घर टूटता हुआ इंसान देखता है ना सर, तो लड़ाई झगड़ों को एक तरफ करके पहले घर को संभालना जरूरी है. आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान की एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा है. तो मैं फिर बार बार ये दोबारा इसलिए कह रहा हूं, वो पीटीआई के अरकान हो, वो मुस्लिम लीग के हो या पीपल्स पार्टी के हो, कि खुदा रहा अभी ये नफरतों का टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा जुड़ने का टाइम है. जब आपकी चल पड़े गाड़ी, आप इकोनॉमी आपकी ठीक हो जाए, फिर लड़ेंगे, मसला थोड़ी, लड़ते रहेंगे, कोई इशू नहीं है. बट अभी छोड़ दें, अभी बहुत मुश्किल दौर चल रहा
है. आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ ये है कि हमारी डिफरेंट ओपिनियन है एक दूसरे से, राय मुख्तलिफ है. जैसे इस मुल्क में रह रहे हैं, जब हम इस मुल्क से नहीं सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे.
बिल्कुल.
और दूसरा ये ना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा. जो लीडर होता है वो सारी कौम को एक गाइडेंस देता है, एक लाइन देता है कि भाई इस लाइन पे आपने काम करना है. लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसको कामयाब करे आपको उमदा कोशिश में.
देखिए मेरी कोशिश सिंपल सी कोशिश है सर, जो अल्लाह ताला ने कहा, जो हमारे जो तालीमात हैं हमारे घर से, हमारे मुल्क से, हमें उसको लेके आगे चलना चाहिए. मेरा मुल्क कनाडा भी है, ठीक है ना, बट अगर खुदा ना खासा यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे भी एक रेसिज्म पे चीजें शुरू हुई हैं, तो उस पर भी मैं एक डॉक्यूमेंट्री और चीजों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे यह है कि जहां पे भी अमन कर सके, जहां पैगाम पहुंचा सके, वही आपकी तबलीग है, बस आपके लिए आपको वही करना है. थैंक यू सर.
बिल्कुल.
थैंक यू.
और दूसरा ये थोड़ा सा, हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारी दो माएं हैं.
जी.
एक ने हमें जन्म दिया और एक ने हमें रिस्क दिया.
जी,
तो हमारे लिए दोनों ही काबिल एहतराम है ना.
बिल्कुल सर.
थैंक यू सो मच.
थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी ये लाइन ड्रॉप हो गई है हमारे पास. एक बार साथ. अच्छा, अब मैं जरा जवाब थोड़ा सा देना चाहता हूँ अबरार साहब का. अबरार साहब ने कहा कि मेरी इन्फॉर्मेशन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी
अस्सलाम वालेकुम. जी मैं
कौन? जी 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 आप ऑनलाइन है सर, बताइए. नाम बताएंगे अपना?
मेरा नाम मुस्तफा.
सॉरी सर, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है.
अच्छा, मैं जरा ये गाड़ी की विंडो बंद करके ना मैं उनसे बोलता हूँ.
जी जी बोलिए. अब आपकी आवाज सही है सर.
अब ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम सर. क्या नाम है सर?
चौधरी मुस्तफा नाम है.
अच्छा सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर.
बड़ा शुक्र अल्लाह ताला का, आप अपना समय.
सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सर कोई कमेंट्स करना चाहेंगे आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सिचुएशन पॉलिटिकल चल रही है?
हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हर पार्टी जो है ना वो एक एक आदमी पे खड़ी हुई है.
जी.
अगर उसको उठा दे तो पार्टी जो है बिखर जाएगी. तो उन्होंने मजाज इस तरह के लोगों का बता दिया और बना हुआ है कि वो एक मसूद साहब है, उनकी पंजाबी की शायरी आज की बकाई है, वो अपने कमी से पूछ रहे हैं.
जी.
तो वो जो भी वो चौधरी कहता है ना कि ये चीज बनानी है, उसकी वो तारीफें करता है. जिसको वो कहता है कि यार दफा कर लो, उसकी वो बुराइयां शुरू कर देता है.
जी.
तो ये हमारे लोगों की, हमारे कारकुनों की सब की है कि जो भी है वो दूसरे की सुनता ही नहीं बिल्कुल.
जी.
तो बाकी हमारी जमीन में शख्सी वफादारी बहुत ज्यादा है, ना होती तो अंग्रेज 200 साल या इतने हुकूमत नहीं करके जाते. कोई भी जी करेंगे, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी, अपने अपनी जगह पे सारे खड़े हुए हैं.
जी.
कोई भी सेंस की बात नहीं सुनना चाहता, बहस करेंगे उसका कोई सलूशन नहीं, बेशक वो झूठे हो जाए बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये भी जिनको वो न्यूट्रल कह रहे हैं, ये वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, पीछे जाहिर है वो ताक पे बैठी हैं, तो इसीलिए तो इमरान खान को वो कैसे ओवरनाइट में ये हो सकता है कि अदम एतमाद हो जाए। जैसे ये हुआ है जिस तरीके से, ऐसे लैटिन अमेरिका में तो होता था, वो गरीब मुल्कों में ऐसा मैंने तो पहली
सर, 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 सर मैं आपसे एक सवाल ऐसी पूछना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, जो कि होता है साजिशें होती हैं मुल्कों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ। अभी जो हो गया, चले हो गया, मैं मान लेता हूं, राइट नाउ जो सिचुएशन है, क्या अगर अभी इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे संभाल लेंगे मुल्क?
देखें
जो हालात हैं, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, या थोड़ा सा सुकून कर लेना चाहिए कि चलो थोड़ा सा बेहतर हो जाए फिर लड़ लेंगे।
देखें अगर अगर तो वो आते हैं ना पूरी पूरी फॉर्म के साथ, एटलीस्ट उन्हें मेरे ख्याल इमरान खान को दो तारीख सीरियस चाहिए।
वो तो सर नहीं मिलती, वो तो अब नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती है।
हाँ, वो एक दफा उन्होंने नवाज शरीफ को दी थी,
जस है, जस, वो इसलिए वो बोलते हैं मिलना ही नहीं चाहिए दो तारीख से, ताकि निकाल तो सके।
हाँ, वो सांड काबू नहीं आ रहा
था। जी जी
इनको भी इसको अगर दो तारीख मिलेगी तो हमें नए कवानीन चाहिए।
सर मुझे एक और बात बताए, अगर दो तारीख नहीं मिलती फिर इमरान खान साहब की इसी तरह हुकूमत चार पांच लोगों के साथ होती है, तो फिर वो बोलेंगे दोबारा इलेक्शन करो, जब तक दो तिहाई नहीं मिलती। क्या करना क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सिचुएशन अभी कंट्री की है,
इमरान खान को आना ही नहीं चाहिए,
नहीं आना चाहिए। तो फिर इलेक्शन अभी देखें, बहुत सिंपल सी बात है, आप यहां बैठ के मैं यहां बैठ के ये अंदाजा कर सकते हैं कि दो तिहाई अक्सरियत तो नहीं मिलेगी, आपको भी पता हमें भी पता है, एक दफा दी उसके बाद उन्होंने भुगत लिया। अब अगर इमरान खान साहब दो तिहाई अक्सरियत से नहीं आते तो ये लॉन्ग मार्च, ये धरने, इन सब चीजों से क्या फायदा, मुल्क और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। अभी अगर ये खामोश हो थोड़े टाइम के लिए, ताकि थोड़ी सी पटरी पे तो आए ना गाड़ी, उसके बाद
ये गाड़ी पटरी पे नहीं आने वाली, ये लेट गए मास्टर साहब के सामने। जिस तरह से मास्टर साहब ने लताड़ा है, लताया इनको दुनिया में, हमारी बहुत जगह साई हुई है।
सर अच्छा एक और चीज पूछते हैं, सॉरी आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा चले मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ लेट गए, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेट गए अमेरिका के आगे लेट गए, जैसे कि अमेरिका का सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप खुदा ना खास्ता, मैं वैसी जनरल बात करूँ, एक नॉर्मल आदमी के लिए मिसाल दे रहा हूँ, कोई माँ या कोई बाप अपने बच्चे को भूखा देखे और सोचे कि कल को उसके पास ये जो आधी रोटी ये भी नहीं होगी और उसके पास ये छत भी नहीं होगी, और अगर उसको कहा जाए कि तू यहाँ आके मेरे लेट जा फिलहाल तो तेरे बच्चे को खाना दे दो, उसको क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए उससे, उसको बोलना चाहिए नहीं मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा हूँ फिलहाल इसलिए क्योंकि मैं अपने बच्चे को परवान चढ़ा लूँ, फिर मैं बाद में लड़ूंगा तुझसे?
नहीं ये नहीं, देखें इसमें सीधी बात है, ये तो जो अभी हुकूमत है ये तो भानुमती का कुंभा है, ऐसे ही इमरान खान को।
सर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर ये हट भी गई तो क्या मुल्क सुधर जाएगा, या आएंगे तो क्या मतलब सेट हो जाएगा? इकोनॉमी बहुत खराब है सर, अभी सिचुएशन बहुत खराब है। सर एक और कॉलर मेरे साथ है, आप होल्ड पे रहिएगा, मैं उनको भी लेता हूँ, प्लीज। सलाम वालेकुम जी।
हाँ मैं कामरान बोल रहा हूँ
जी। कामरान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं?
देखिए मेरे ज्यादा ख्याल है ना
जी।
हाँ मैं ना पटरी से उतर चुके हैं
जी, बिल्कुल।
दूसरा ये एक बात ये है कि हम कवर चला हंस की चाल अपनी चाली बोल लिया,
बिल्कुल सर।
ये हम हमारा तो एक वो है लॉ है, हमारे पास एक लॉ है, हमारे पास एक कानून है, इस्लामी कानून, ठीक है ना
जी जी जी।
हम उसको क्यों हम उसको क्यों नहीं डालती, जैसे सऊदीया वगैरह दूसरे अरब अरब इलाके में
बादशाह वाला
है ना, ठीक है वो
जी।
ये हम घोड़े का जो रूल्स है उसको हम क्यों फॉलो करें, जब हमारा
सर उनकी गुलामी में रहे ना सारा साल से उनके, आज तक आपको पता पुलिस रूल सारे उन्हीं के हैं। जब हमारे पास एक कोई कॉलर है उनको भी शामिल कर ले आपके साथ, अगर आप बुरा ना माने जी। सलाम वालेकुम जी।
सलाम वालेकुम
जी। सर नाम बताएंगे अपना? सर
मेरा नाम सईद है
जी। सईद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
बस अल्लाह का शुक्र है।
जी सर
मैं ये कह रहा था कि इकोनॉमी तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत खराब है अभी
जी। जी सर
तो आप बताएं कि खराब की किसने, जब इमरान खान गया तो उस वक्त तो बहुत अच्छी थी और उसके रिजल्ट बाद में आ रहे हैं, इनकी हुकूमत में आ रहा है
सर प्रॉब्लम।
नहीं मेरी बात सुन ले, पूरी मेरी बात सुन ले प्लीज। आप देते हैं जब भी कोई
बोली 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 बोली
मैं ये कह रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इमरान, मैं हक की बात नहीं कर रहा, मैं ये कैलकुलेशन है, ये सारी सारे ब्लैक एंड व्हाइट में है। अभी आया रिसेंटली कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था, जीडीपी 6 पे जा रही थी,
ठीक है,
तो तो उस वक्त तो मुल्क अच्छी हालत में था ना, जो अभी खराब हुआ तो ये किसने किया? आप इसका जवाब मुझे देना।
बिल्कुल
आप
सर,
मुझे दें।
बिल्कुल मैं आपको देता हूँ।
किसने किया ये?
सर मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने जो बात कही है कि इमरान खान की जीडीपी अच्छी हो रही थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अच्छी हो रही थी। अगर इमरान खान साहब अभी अभी ये माजी हो गया कि वो निकल गए, वो गलत किया, मैं कभी उनको सही नहीं कह रहा कि वो अच्छा किया या निकालना जरूरी था, नहीं, बल्कि डेढ़ साल इंतजार करते इमरान खान साहब खुद गिर जाते, जो मुझे लगता था, जो हालात बता रहे थे, लेकिन उन्होंने गलत किया।
अब जवाब तो सुनिए।
हो गया, मेरा मकसद और मेरा ये शो में आज ये कहना है कि राइट नाउ जो सिचुएशन है, जो हो गया वो तो हो गया, गलत सही वो तो है, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। अभी जो सिचुएशन है, क्या ये जरूरी है कि चलो उन्होंने तो बहुत बुरा किया, वो तो है ही, सर्टिफाइड चोर भी हैं, बेकार भी हैं, डाकू भी, जो इमरान खान साहब कह रहे हो सब सही मान लेते हैं हम बात को। अभी
नहीं, जो इमरान खान
सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, चलो सब कह रहे हैं, आप भी गए, सब पूरी दुनिया कह रही है, वो मान लेते हैं, वो गलत लोग हैं। लेकिन अगर अभी जो सिचुएशन है, क्या आपको लगता है अगर अभी इमरान खान साहब को दोबारा गवर्नमेंट दे देंगे तो क्या होगा, क्या वो चला लेंगे?
आप बताएं कि तो बताएं कि ये चोर जिसको सब मार रहे हैं, आप भी मार रहे हैं, चोर है तो ये मुल्क सही कर लेंगे?
सर मुझे
इसका मतलब है कि इमरान खान तुमसे अच्छा है ना?
नहीं सर, नहीं नहीं, बात पता ही क्या है, जो सिचुएशन है ना उसमें थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करने का, इसलिए एक तो कौम बिखर गई है, सुने, दूसरी इकॉनमी बहुत खराब हो गई है, अभी आपको कड़वा घूट पी के थोड़ा सा खामोश रह के सिर्फ इस हद तक कि हमारी इकॉनमी थोड़ी सी सेट हो जाए, लड़ लेंगे। अभी इलेक्शन वैसे भी 4 महीने में तो होने नहीं है, 6 महीने में तो होने नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत अर्ली भी करेंगे तो 6-7 महीने लग जाने, तो अगर ये 1-2 महीना सुकून का गुजर जाए ना, जहां इस तरह की मुबालगा राई या बदतमीजियां या चीजें ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ना हो दोनों तरफ से, तो मैं समझता हूं शायद फिर भी मुल्क को थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि हम फाइट करते रहे। और बाहर से
कैसी बात कर रहे हैं सर आप, ये लोग 40-40 साल
सर आप अभी ले भी लेंगे सर, अभी आप हुकूमत ले भी लेंगे, होगा क्या? हुकूमत ले भी लेंगे तो क्या होगा? मैं तो बोल रहा हूँ हुकूमत ले भी लेंगे, मसले ही
इमरान खान ने ली थी तो आखिर वो ले आया था ना, कहाँ पे ले आया था?
4.5 साल सर, देखें आप बोल रहे हो सम्राट आ रहे थे, आने थे, आए नहीं थे?
नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ये बात आपकी बात बिल्कुल सही नहीं, आप मुझे इसमें बताएं ना कैसे सही करेंगे, आप मुझे बताएं रोड मैप क्या उनका, कैसे सही करेंगे?
सर मुझे नहीं
पता, पहले 40 साल
देखे
कैसे करेंगे, बताएं।
एक मिनट आप बोल कीजिए, एक कॉलर को लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं सर, नाम बताएंगे अपना?
मैं आफाक बोल रहा हूँ सर।
सॉरी आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है भाईजन।
मैं आफाक बोल रहा हूँ। आफाक
जी, आफाक भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
जी खैरियत है, ठीक ठाक। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा, एक तो ये है कि इमरान खान साहब को जब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट मिली तो ही वाज नॉट हैविंग 2/3 मेजोरिटी।
यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 2/3 मेजोरिटी
लोगों के साथ मिलकर तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई जहाँ से वो ब्लैकमेल होते रहे
जी।
दूसरी ये मैं बात करूंगा कि अब उनको जो है ना, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को थोड़ा सा और छोड़ दिया जाता तो ये खुद बहुत खत्म हो जाता।
एग्जैक्टली
इसी तरीके से अब इमरान खान साहब को जलसे जुलूस करने चाहिए, लेकिन लॉन्ग मार्च ना करें, ये गवर्नमेंट खुद
एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट है सर, ये गवर्नमेंट भी गिर जाएगी अपने बोझ से, और ये गवर्नमेंट को फिर अगले इलेक्शन में कोई हो सकता है अगले इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी मिल जाए इमरान खान को।
दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं ठीक हो सकता जब तक एक 2/3 मेजोरिटी ना आए और उस जो प्राइम मिनिस्टर हो उसके हैंड्स फ्री ना हो, इनके हैंड्स बंधे हुए। देखे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट चाहे सिविल हो, मिलिट्री हो, जो भी हो, उनके 10-10 नौकर हैं।
जी जी,
DIG जो है उसके मतलब ये है कि 60 नौकर हैं जो कि उसने अपनी फैमिली में दिए हुए, उसके डिस्पोजल पे 10-20 गाड़ियां हैं। मुझे ये बताएं कि सियासतदान तो ठीक है वो ब्लेम होते हैं, लेकिन
जी जी,
जब तक आप एक सोनी इंकलाब नहीं लाएंगे ये सब
जी,
कुछ
और जी जी, थैंक यू अफाक भाई, थैंक यू जी। सईद भाई अब आप बोलिए, सईद भाई आप जो बात कर रहे हैं, देखें इन्होंने बहुत सही बात की अफाक भाई ने।
आपने पिछले दिनों इमरान खान के इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें इमरान खान ने क्लियर बोला है कि अगर मुझे 2/3 नहीं मिली तो मैं अपोजिशन में बैठूंगा।
यही मेरा भी अभी सवाल था। देखिए उन्होंने
आफाक भाई ने बहुत अच्छी कह रहे हैं ना,
सुन तो ले
आफाक तो लेना है ना,
सर हमें तो बोले ना आफाक भाई ने ये बात जो बोली कि अगर आप इनको भी टाइम दे देंगे ये खुद अपने बोझ से गिरेंगे, जो भी गवर्नमेंट है टाइम तो दें। जैसे इन्होंने गलती की है ना नून वालों ने, इमरान खान को निकाल के 1.5 साल और रहते इमरान खान खुद गिर जाते, इसी तरह कहीं पीटीआई गलती ना करे इनको निकाल के कि फिर वो अपने सर पे बोझ ले लें, जो आज
इनका 1 साल less than 1 year रह गया है
जी जी,
तो इसमें क्या कर लेंगे? इससे अच्छा नहीं है कि फ्रेश इलेक्शन हो जाए?
सर बहुत अच्छा है, ये 1 साल में और नुमाया हो जाएंगे चोर डाकू, 1 साल में और नुमाया हो जाएंगे।
चलो सर, इमरान खान के बहुत बड़े फैन है यार, आप तो इमरान खान की ऐसे तारीफ कर रहे हैं।
सर मैं तारीफ नहीं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ।
देखिए
मैं फैक्ट पे बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं इमरान खान के, देखिए ना मैं इमरान खान को ऑनेस्टली मैं लाइक करता था, बट मैं अब इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत मेरा दिल टूटा हुआ है, जो फैक्ट है मैं नहीं कह सकता कि मेरी फीलिंग क्या है। लेकिन ना मुझे नवाज शरीफ से हमदर्दी है, ना मुझे क्या नाम है जरदारी से, मुझे अगर हमदर्दी है तो अपने मुल्क से, और मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरीन और अच्छा होना चाहिए हमारे मुल्क।
सर जी, मेरी बात सुने, मेरी उम्र भी तकरीबन 50 से ऊपर हो गई है।
जी जी।
मैं एक जमाना था बेनजीर का डाई हार्ट फैन था, एक जमाना था कि मैं नवाज शरीफ का डाई हार्ट फैन था।
होते हैं सर,
लेकिन जो जो उम्र बढ़ती गई पता लगता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे, समझ आती गई। तो फिर बीच में ऐसा टाइम आया कि हमने इन दोनों को वोट देना छोड़ दिया।
बिल्कुल सही सर, मैं आखिरी बात बोलूं, आपकी कॉल भी और कॉलर भी हमारे सर, आखिरी बात बोलूं सर, मैं सिर्फ दुआ करता हूं अल्लाह ताला से हमारे मुल्क के लिए, अगर इमरान खान बहुत अच्छे हैं तो अल्लाह ताला उनको 2/3 मेजोरिटी से लेकर आए, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला फिर उसको लेकर आए जो हमारे मुल्क और कंट्री के लिए सबसे
अच्छा। आमीन आमीन। हम भी
दो मांगते हैं, हमारे कंट्री के लिए अच्छा होना चाहिए सर।
बिल्कुल,
थैंक यू।
आवाम के लिए, आवाम के लिए
सर, वो बहुत पिस गए बेचारे। चले जी, थैंक यू अमर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सही सर, ओके जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मैं वही हूँ
कामरान जी, कामरान भाई आप भी हमारे साथ हैं, फाक भाई आप भी साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी कामरान भाई बोलिए, आप कुछ बोलिए।
उनको बोलने दे
सर, मैं इंडिया से हूँ।
जी 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 कामरान
जी, आप मैं बात कर सकता हूँ?
जी मैं आसिम बात कर रहा हूँ प्रोग्राम में, बोलिए आप।
जी जी, मैं इंडिया से हूँ और यहाँ लास्ट 35 साल से 35 ईयर से यहाँ रह रहा हूँ।
जी जी,
लेकिन जो हम देख रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के हालात, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बद से बदतर हो रहे हैं।
जी जी,
आप किसी ऐसे हुक्मरान या किसी ऐसी पार्टी का नाम लीजिए जिन्होंने अपने इंटरेस्ट की तरफ नहीं देखा, लोगों के इंटरेस्ट की तरफ देखा या नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देखा। मुझे तो कोई ऐसा हुक्मरान नजर
नहीं। सर आपने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन सर हम उम्मीद तो दुनिया कायम है, कोशिश और दुआ तो यही कर सकते हैं।
दुआ कर सकते हैं लेकिन दुआ का असर कोई नहीं हो रहा।
सही,
अल्लाह का नाम ले रहे हैं, खुदा का नाम ले रहे हैं, लेकिन सर अपने
एग्जैक्टली बस ये आप सही कह रहे हैं। इस बात पे मैंने अपने इंट्रो में भी बात कही थी कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारी पार्टियों सबसे, जितने भी दुनिया मजहब को बीच में मत लाइए, आपके पर्सनल इंटरेस्ट है।
नहीं, मैं जनरल बात करता हूँ कि बाद में अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन उनकी बात सुनते नहीं, अल्लाह की बात सुनते नहीं।
हाँ, अल्लाह की बात करते। जी 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 बिल्कुल।
हाँ जी
जी बिल्कुल,
ये बात।
चले, थैंक यू सर, थैंक यू।
आज तक नजर नहीं आया जो लोगों के इंटरेस्ट की बात करें।
जी बिल्कुल सर, नहीं बातें इंटरेस्ट में लोगों की होती हैं बट उनके लिए कुछ होता नहीं है, बस ये बातें बड़ी होती हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू मच।
देखा आपने पंजाब में जो नया सीएम बना है उसने अपना हेल्थ मिनिस्टर जेल में भेज दिया, एक दिन में उसका वो कमीशन मांग रहा था 1%।
जी जी,
1% कमीशन मांग रहा था लोगों से और उसको जेल भेज दिया।
कहाँ की बात कर रहे हैं आप, ये हेल्थ मिनिस्टर कहाँ का?
पंजाब, इंडिया
पंजाब। अच्छा, तो उसे 1% कमीशन
मांग रहा था लोगों से, नई सरकार बनी है, उसने उसको जेल भेज दिया दूसरे दिन जेल भेज दिया।
अच्छा, तो इसका मतलब सरकार अच्छी है सर, उसने जेल भेज दिया।
हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे बंदे होने चाहिए, राइट द वे, राइट डिसीजन।
जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मौजूद हैं? हेलो,
मैं तो सुन रहा हूँ
जी। आई एम सॉरी, आपको थोड़ी सी जहमत उठानी। जी सर आप बोलिए।
मैं तो बोल चुका, बस ये यानी कि कोई भी मेरे नजर में कोई भी ऐसा कोई आदमी नहीं है अभी तक, कोई मुल्क को बेहतर बना सके, पता नहीं हालत लोगों ने, बस क्या करें।
सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुझे समझ में आता है ना, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं शायद किसी की दिलाजारी भी कर जाऊं ये बात करके, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। वो अभी मुझे एक साहब ने बोला था, सर यहाँ तो शायद की मक्खियों का छत्ता, आप कहाँ हाथ डाल रहे हैं इमरान खान साहब के लिए कुछ कहकर। मैंने कहा मैं सही को सही और गलत को गलत जरूर बोलूंगा, चाहे वो किसी के लिए भी हो। अब लोग मुझे बोलते हैं बायस्ड है तो भी सही है, नहीं बोलते तो भी सही है। अभी उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है आप इमरान खान साहब के फैन है। मैं फैन नहीं हूं, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूं कि लॉजिक और सीरियसनेस कितनी है हमारी अपनी कंट्री से, और क्या हो क्या रहा उसको तो देखिए। तो बहरहाल एनीवे, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर, जब तक अपनी अना से नहीं हटेंगे, जब तक अपने गुरूर से बाहर नहीं आएंगे सर, जब तक कुछ नहीं होगा।
एक बात आती है, जैसे इमरान खान आया था ना, उसी वक्त आते ही रशियन चला जाता
था। एग्जैक्टली सर, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये उस वक्त मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये बात कही थी आने के 6 महीने बाद कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है, या माफियाज बहुत है, मेरे जहन में ये था, मेरे जहन में था इमरान खान सब फौरन इलेक्शन करवाते, बोलते मुझे चाहिए नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं क्यों 4 साल लोगों का टाइम जाया करूं या अपने आप पे बुराई लूं। लेकिन बाहर रहने
वैसे भी अगर वो आया था ना तो रशिया से दूर सीकर तो अभी तक थोड़ा बहुत हालत सही रहते।
सर प्रॉब्लम ये देखिए मैं आपको बताऊं, लोग वो वाली बात है ना, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये जो हम अमेरिका को बार बार बोलते हैं ना अमेरिका ऐसा अमेरिका वैसा, सर बड़ी माजरत के साथ जब से पाकिस्तान बना है ना, जब से आपका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर मैक्सिमम जो आपकी सपोर्ट में रहा है ना
वो
अमेरिका रहा है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, आपकी जितनी फंडिंग्स है ना, जितने आपकी एड्स है ना, जितना कुछ भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजी बनती है, चाहे वो F-16 हो, क्योंकि हमें तो डर था ना सर हमारे पड़ोसी मुल्क से कि हम फाइट करेंगे, क्या F-16 हो, जितने असले थे वो सब अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया था। अब आप मुझे बताएं जब हम उनके कर्जों तले दबे हुए हैं, गलतियां तो हमारी है ना कि हमने वो कर्जे उतारे नहीं, हम उनको दे नहीं पाए वो चीजें जो हमें, क्योंकि हम तो लड़ते रहे, पहले 2 पार्टियां लड़ रही, अब 3 लड़ रही हैं। तो सर जब आप किसी के अंडर चले जाते हैं आपके सर पे बहुत बोझ आ जाता है, आप अगर उसको फौरन बोलेंगे कि चले जाओ, अगर वो पाबंदियां लगा दे तो सर हमारा हाल भी फिर उन मुल्कों की तरह हो जाएगा जहां कहत पड़ जाते हैं। तो हम आप क्या समझते हैं कि हमें अपनी आने वाली नस्ल को कहद में डाल के मरवा देना चाहिए ये करके कि हम अमेरिका के साथ नहीं है, या हमें फिलहाल इतनी मोहलत लेनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी ना मरने दें, ठीक है, और उनके कर्जे भी उतारने की कोशिश करें। हम ये नहीं कर रहे अभी, हम तो बोले जी हटा दो, हट जाओ, छोड़ दो, ये बड़ी गलत थॉट है जो कि नहीं हो। अब इस पे लोग बोलेंगे कि आप तो जी अमेरिका के तलवे, तो भाई बात तलवे चाटने की नहीं है, बात सिंपल सी है, आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन है इंडिया को, ये जो रशिया इंडिया को जो 30% डिस्काउंट पे तेल अभी से नहीं दे रहा,
और बहुत पहले से,
और क्यों दे रहा है, क्योंकि उनकी आपस में रिलेशंस हैं। पाकिस्तान को अमेरिका अभी से मदद नहीं कर रहा, ये नहीं कर्जे नहीं देता, वो तो एड देता है कि आपको माफी है, जितनी अभी पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन हुई है ना, आपको पता है 10 या 12 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन सिर्फ अमेरिका ने दिए, आप ये सब भूल जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं खुदारा थोड़ा सा काम डाउन, ठीक है ना, अपने आप को इतना मजबूत करो कि किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े, और जब आप कमजोर हो तो आप सबके आगे झुकोगे, ये आपकी मजबूती है। सर मजबूत होने के लिए देखिए, मजबूत होने के लिए सर इस मुल्क को छोड़ा नहीं ना किसी ने, सर साजिशें तो अभी से नहीं हो रही, 1947 से साजिशें हो रही है सर।
सबसे हमारी अदालत जो है ना
सर, नहीं सर हम पता ही, अगर हम जो है ना ब्लेम गेम में चले जाते हैं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम ब्लेम गेम में जा रहे हैं। आप कभी तो निकलिए इस चीज से, कभी हम अदलिया पे जाते हैं, कभी हम, अब आप देखें, मैं ऑफकोर्स 40+ हूं, बट मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि कोई भी शख्स या कोई भी आदमी उठ के आदमी को बुरा भला अंदर बैठ के सब कहते थे। आज वो सिचुएशन हो गई है कि मैं ऐसे ऐसे क्लिप देख रहा हूं कि मैं खुद, ये खुदा ना खास था, मैं एक सच्ची बात बताऊं, आर्मी को हटा देना हमारा मुल्क खत्म है सर,
खत्म है, ये तो है।
अब आप उस सिचुएशन पे, उस नहज पर आ गए हैं कि आपकी आवाम आर्मी के सामने खड़ी हो गई है, वाओ। अब अगर इसको मैं साजिश नहीं कहूंगा तो फिर क्या बोलूंगा, आपने कभी सुना था? ये सर सब चीजें हैं पॉलिटिकली जिनको मैं कहता हूं कि खुदारा हम एक आवाम है, हमें थोड़ा सा काम डाउन, हमें अंदर की गेम नहीं पता होती क्या हो रही होती, आप सिर्फ काम डाउन रहिए, अपने मुल्क को और अपने लोगों को इस्तेकाम दीजिए, और एटलीस्ट इस कंट्री को पटरी पे चढ़ने दें, इक्तदार चाहिए 2 साल बाद 1.5 साल बाद ले लें। अरे अगर ये गलत हैं, ये 1.5 साल के अंदर खुद गिरेंगे, इन्होंने गलती की इमरान साहब को गिरा के, इन्होंने गलती की इमरान साहब को गिरा के, मैं तो बोल रहा हूँ गलती की इन्होंने,
गलती की
छोड़ देते, वो खुद गिरते 1.5 साल बाद। जी थैंक यू अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अहमद जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी।
जी
आई एम सॉरी सर, आपको जहमत उठानी पड़ी इंतजार की, मेरा ख्याल आपकी कॉल वेट पे थी। जी सर नाम बताएंगे सर अपना?
समी बात कर रहा हूँ।
जी समी भाई,
अच्छा बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि नवाज शरीफ जो है वो वकील नहीं करता है, अपने केसेस के लिए वो जज हायर करता है।
सही,
बस इससे आगे मैं नहीं बोलता।
ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आपका इशारा किस तरह है जज? जी समी भाई ने बोला कि नवाज शरीफ जो है वो वकील नहीं करता, जज हायर करता है, तो सही है, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है, और कोई इसमें मैं दो राय नहीं रखता کیونکہ ہسٹری رہی ہے ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹری کی کہ جہاں پہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت کم میرٹ پر ہوتے ہیں جو لوگوں کی آرا میں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ جج کے دماغ میں اس وقت کیا ہوتا ہے, یا تو وہ اپنے کسی مفاد کے چکر میں فیصلہ دیتا ہے یا پھر اس کو ججمنٹ وہی صحیح لگتی جو دینا چاہتا ہے, آئی ڈونٹ نو. کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے جج کے لیے سب سے بڑا مشکل کام جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے. جب اس کے پاس ججمنٹ آتی ہے تو اس کے پاس دو فریق ہوتے ہیں, ایک کہتا ہے گناہ نہیں کیا, ایک کہتا ہے گناہ کیا ہے, اور دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں, فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب جج کو ڈسیزن دینا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بالکل اچھا ہوتا ہے کہ جس کے حق میں جائے گا وہ تعریفوں کے پل باندھے گا, اور جس کے اگینسٹ جائے گا وہ آف کورس میرے پہ جو ہے نا الزامات لگانا شروع کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں جج کی ذمہ داری سب سے زیادہ مشکل ہے. ہم اپنے ملک میں اپنی قوم میں ایسا چیزیں پیدا کر رہے ہیں کہ آگے جا کے لوگ جج بننا مشکل ہو جائے گا, بولیں ہم جج نہیں بن رہے کیونکہ ہم جو بولیں گے اس کے اگینسٹ ہمارے پہ تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو بہرحال سر مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کوئی نالج, اور آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط بول رہے ہیں, ایسا ہوا ہے کئی دفعہ کہ کیسز اور چیزیں جتنی ہوئی ہیں, وہ نون لیگ بھی کہتی ہے کہ جج بک گئے تھے نواز شریف کی اس کے اوپر جب اس کو سزا ہوئی, اور وہ آج بالکل عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے حق میں جو فیصلے آ رہے ہیں وہ جج دے رہے ہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم اس کے بارے میں اور کیا کمنٹس کریں گے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال نہیں بھائی, تو ویک اس ویک پہ ہم سب سے پہلے اسپانسرز کا دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں. امیڈیٹ ریسپانس سروسز, آپ پروگرام سن رہے ہیں ویکینڈ ود آصم علی جو کہ اسپانسرڈ بائی امیڈیٹ ریسپانس سروسز اینڈ وینٹیج ویڈیو پروڈکشن ہے. امیڈیٹ ریسپانس سروسز جو ہے وہ سیکیورٹی کی بہترین ایک فرم ہے جو کہ کینیڈا سے بلانگ کرتی ہے, اور سب سے اچھی چیز یہ کہ ویسے تو سبھی سیکیورٹی کمپنیاں اچھا کام کر رہی ہیں, بٹ امیڈیٹ ریسپانس سروسز کا سب سے بیسٹ چیز یہ کہ امیڈیٹ ریسپانس سروسز آپ کو ہائی ٹیک سیکیورٹی سروسز پرووائڈ کرتی ہے, یعنی کہ وہ جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کو یوز کرتی ہے اپنی سیکیورٹی میں, اور پھر وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے. تو کمرشل ہو, کارپوریٹ سروس ہو, رہائشی سیکیورٹی ہو, ڈسٹریبیوشن سینٹر ہو, ویئر ہاؤس ہو, ہاسپٹل ہو, کنسٹرکشن سائٹ ہو, یا ٹرانسپورٹیشن یارڈ ہو, یا پھر اب تو اسکریننگ گارڈ ختم ہو گیا کیونکہ وہ کووڈ چلا گیا, پہلے اسکریننگ گارڈ کے لیے بھی یہ اپنی سیکیورٹی دیتے تھے. تو آپ کال کر سکتے ہیں امیڈیٹ ریسپانس سروسز کو 6479870002, نمبر پھر دوبارہ ریپیٹ کرو 6479870002, www.irfi.ca www.irfi.ca پہ جائیے اور آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز, اگر آپ کو سیکیورٹی گارڈ بن کے جاب حاصل کرنی ہے تو بھی سب سے بیسٹ جو میں یہ کہوں گا وہ امیڈیٹ ریسپانس سروسز ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے تو بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر لائسنس ہے تو سیدھا سیدھا جاب پہ جائیے, اور اگر لائسنس نہیں ہے تو وہ آپ کو لائسنس بھی دلوائیں گے, ٹریننگ کروائیں گے, اور آپ کو جاب بھی دیں گے, اور سب سے اچھے ریٹ وہ آپ کو دیں گے. تو ابھی آپ ٹریننگ کی ڈیٹ بک کروائیے اور کال کیجیے 6479870002 www.irfi.ca پر. کسی بھی قسم کی امیگریشن سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو ابھی تو فون اٹھائیے, کال کیجئے اور امیگریشن کی کسی بھی سوال کا جواب حاصل کیجئے اسما صابر سے. تو کال کیجئے 6472175492 6472175492, اور اسما صابر کو بتائیے کہ ہم آپ کو آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, ہم نے یہ پروگرام میں آپ کا سنا تھا, تو اب وہ آپ کو جواب دیں گی اور چیزیں بتائیں گی کہ آپ کی کوئی بھی مشکلیں ہیں تو وہ حل کر سکتی ہیں تو کریں گی. پیزا 786 مارکھم میں ہے, بہترین حلال پیزا ہے, ٹاپنگ بڑی زبردست ہوتی ہے, چکن بہت اچھی ہوتی ہے, آف کورس ذبیح حلال چکن استعمال کرتے ہیں, چیز بہت اچھی ہوتی ہے اور بہترین ٹاپنگ کے ساتھ پیزا 786. اور پیزا 786 والے کہتے ہیں کہ اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس کرتا ورتا کوئی نہیں, کیونکہ مزہ ہی اتنا آتا ہے کھانے میں, کون پیسے واپس کرے گا. اینی وے کال کر سکتے ہیں آپ 905-554-7886. اجوا پیزا تھون کلف میں ہے, حلال بہترین پیزا, اور یہ کہتے ہیں کہ ایک بار کھاؤ گے تو بار بار آؤ گے, یہ بات تو صحیح ہے. اجوا پیزا اور پیزا 786 ہمارے دوست اجمل خلیل صاحب کا, اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے, ایک بار کھاؤ بار بار آؤ گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک نیا فلیور آ گیا ہے جو کہ ایک دو مہینے ہو گئے شاید انہوں نے بھی انٹروڈیوس کیا ہے, بٹر چکن پیزا. اب میں سوچتا ہوں بٹر چکن پیزا کیسے بنے گا یار, کیونکہ وہ تو بڑی گریوی کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن جو مزہ ہے میرے منہ میں پانی آ گیا. تو آپ اگر تھون کلف میں رہتے ہیں تو ابھی آپ کال کر سکتے ہیں 416-423-2792 416-423-2792, और अगर आप मार्कम में तो आप पिज्जा 786, और अगर आप थॉर्नक्लिफ में तो अजवा पिज्जा। वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन इनकॉर्पोरेशन, शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, आपकी सुनहरी यादों को महफूज करते हैं। वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, आपको बेहतरीन सर्विसेज देते हैं, और वो भी आपके अपने बजट में रहकर। बहुत सारे लोगों के पास इतना बजट नहीं होता, बोलते पैसे कम है, तो ये बोलते हैं चलो ठीक है इसमें हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो आपकी कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है। अगर आपको मॉडलिंग करनी है, पोर्टफोलियो बनाना है, एक्टर बनना है, तो भी आप वेंटेज वीडियो प्रोडक्शन को कॉल कर सकते हैं। नंबर इनका है 6477454104, 6477454104। और अगर आपने सोशल मीडिया टीवी के कमर्शियल बनाने हैं तो भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। चर्च, मंदिर, मस्जिद की फंड रेजिंग कैंपेन करनी है तो भी आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनका बजट कम से कम होगा। कॉल कीजिए 6477454104, और अगर ये फोन ना उठाएं तो आप मैसेज कर दीजिए, कॉल बैक जरूर होगी। मस्जिद इब्राहिम कनाडा की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, आपसे गुजारिश है जितना फंड आप इसमें कर सकते हैं जरूर कीजिए, www.masjidibrahim.ca। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तनवी भाई को कॉल कीजिए 416-566-3830 पर, और जितना फंड करेंगे उतना ही फायदा है। तो हमारा प्रोग्राम में अब 3-4 मिनट बाकी हैं और हमारा प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है, लेकिन बस आपको ये कहूंगा कि पूरे हफ्ते का जो मैंने आपको रिव्यू दिया, दो तीन चीजें जरूर बोलना चाहूंगा, अभी मेरे पास 2-3 मिनट है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं, शुक्र है, मैं बड़ा शुक्र गुजार हूं हमारे लिसनर्स का, जो बहुत अच्छे तहजीब तमीज़ के साथ इख्तलाफ भी करते हैं और बातें भी करते हैं, और कोई हार्श नहीं होता, कोई बुरी जबान इस्तेमाल नहीं करता। जबकि कुछ अरसे पहले हमारे शोज़ में एक दो लोग आए थे जिन्होंने बहुत बुरी जबान इस्तेमाल की थी, बट हमने कोशिश ही की थी हम उनके व्यू ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर वो जो भी कहना चाहते हैं वो शायद हमारी बात से किसी बात से हर्ट हुए हों। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा, गुंजाइश रखिए, दिल बड़ा कीजिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा सबक ही यही है कि आपको यहाँ मस्जिद भी मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा। आपको हर वो शख्स की आज़ादी मिलेगी, चाहे आप किसी भी कौम से, किसी भी मसलक, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है। हमारे दिलों में, हमें अपने दिमागों में और अपने आप के अंदर स्पेस देनी चाहिए। मेरा अगर किसी से इख्तलाफ है, आपका अगर किसी से इख्तलाफ है, तो कोई बात नहीं, इख्तलाफ होना बुरा नहीं है, लेकिन इख्तलाफ के साथ नफरत कर लेना ये बुरा है, क्योंकि आपकी नफरत आपके करीबी लोगों में जाएगी, उनकी उनके करीबी लोगों में जाएगी, उनकी उनके करीबी लोगों में जाएगी, तो सोचिए आप नफरत को आगे फैला रहे हैं। लेकिन आप इख्तलाफ रखें और बोले नहीं यार बंदा सही है, मेरा इख्तलाफ इससे, तो आप एटलीस्ट कम से कम उस बंदे के लिए, उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए नफरत नहीं फैला रहे। तो कोशिश कीजिए नफरतें फैलाने से बचिए, मोहब्बतें बढ़ाने से रहिए, क्योंकि सम टाइम आई फील लाइक कि जन्नत कैसी होगी, तो मुझे फील होता है कि जन्नत तो ये दुनिया थी, जहन्नुम तो हमने बना दिया ना, लड़ लड़ा के, आग लगा के, एटम बम बना के, गन्स निकाल के, एक दूसरे को कत्ल करके, गालियां बक के। अगर आप सिर्फ एक इमेजिन करें, सोचें, आप जब जाते हैं दूर दराज इलाकों में, आप पहाड़ देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आपको नजर आते हैं, दरख्त और ये सब चीजें, सूरज चांद का निकलना, ये क्या जन्नत से कम है? ये बर्फ का गिरना, ये स्नो होना, ये सब चीजें होना, ये क्या जन्नत से कम है? सब कुछ वही है जो अल्लाह ताला ने जन्नत में देना है, लेकिन हम इस दुनिया को जन्नत की जगह दोजख बना चुके हैं, क्योंकि हम अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये सोच भी नहीं रहे कि एक दिन हमने मर जाना है। एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास, 70 साल, 80 साल से ज्यादा क्या जिएंगे? और ताकत देखें, एक जरा सा जुकाम हो जाए या बुखार हो जाए तो हमें लग पता जाता है कि हमारी औकात क्या है। हम तो उठ भी नहीं सकते बिस्तर से, हमारी तो हालत हो जाती कि हमें सहारा देते तो वॉशरूम जाते हैं। सोचिए सिर्फ हमारे पास इतनी ताकत होती है, तो अपने आप को बर्बाद या खराब मत कीजिए, इस दुनिया को बर्बाद या खराब मत कीजिए, और जितना कोशिश कर सकते हैं मोहब्बतें फैलाएं, एक दूसरे के साथ अमन से रहें, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जहां जहां भी ये मेरा पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है, मैं सिर्फ ये कहूंगा अमन के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ रहिए, बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया ही जन्नत लगेगी। आप उस जन्नत को छोड़िए जी, इस दुनिया को जन्नत बनाइए, इधर एंजॉय कीजिए जहां आपको आपकी बच्चे, फैमिली सब नजर आ रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, थैंक यू मच। अगले हफ्ते हम फिर आपसे अपने प्रोग्राम में आएंगे, वीकेंड विद आसिम अली। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।
यू आर लिसनिंग टू WTUR 770 AM, यंगस्टाउन, टोरंटो।
द व्यूज एक्सप्रेस्ड ऑन द प्रीसीडिंग प्रोग्राम मे नॉट नेसेसरली बी दोज ऑफ द ओनर और मैनेजमेंट ऑफ WTUR रेडियो स्टेशन।
ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਪੀਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਸਪਿਟਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈਵੇ 413। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।
ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਂਪੇਨ।
ٹرکنگ انڈسٹری میں کریئر بنانے کا شاندار موقع میز کنسلٹنسی آفر کرتے ہیں۔ ٹرک ڈسپیچر اینڈ فریٹ بروکر اسپیشلسٹ ٹریننگ کورسز، اس ٹریننگ کورس کے ذریعے آپ بن سکتے ہیں ٹرک ڈسپیچر، فریٹ بروکر، یا شروع کریں اپنی ٹرکنگ۔